Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
Welcome all. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. And Wasim bhai, hamesha ki tarah rock style hai. Pura ka pura awaaz. Kya baat hai.
Hello Vishwa Deepak ji. Welcome.
Seher Naseeb. Namaskar. Nawazish hai aapki.
Namaste.
Namaskar.
Bahut acha likhte hain aap.
Sunil ji, welcome.
बहुत शुक्रिया. तो सब हाजिर हैं हम सब. हमारे लिस्टर भी आ ही गए हैं लगभग.
जी.
एंड और है? और उसके बाद वे गुड टू गो.
और सजीव सर कहाँ रह गए हमारे आज?
आज अभी बहुत लोग नहीं आए हैं. आ रहे होंगे धीरे धीरे. हम शुरू करते हैं.
चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों. नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग. हम हाजिर हैं मंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कहानी बुनो. और आज है कहानी बुनो का 14वां एपिसोड. मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी, आज के कहानीकार विश्व दीपक जी और हमारे गेस्ट मनोज जी. बाकी तमाम हमारे सुनने वाले अजीज व मोहतरम जिनसे हम मिल रहे हैं और उनको उनका प्यार भी हमें मिल रहा है. ढेर सारा प्यार, दुलार, मोहब्बतें मिल रही हैं. तो आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनते हैं, सुनाते हैं छोटी मगर बेहतरीन कहानियां और बात करते हैं उन कहानियों की बुनाई के बारे में. साथ ही जानते हैं लेखक से उनका लेखन सीक्रेट कि कैसे उन्होंने कहानी बुनी. दोस्तों, राह चलते हुए अक्सर अगर कोई पत्थर पड़ा दिखता है तो मैं रुक जाता हूं, न जाने क्यों. मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो पत्थर मुझसे कह रहा है कि मुझे परे कर दो ताकि कोई ठोकर ना खा सके. ऐसी बहुत सी निर्जीव चीजें हैं जो हमसे बात करती हैं या हमें अपनी बेजुबानी के इशारे देती हैं. मसला यह है कि हर कोई उन बेजुबानों की बात या इशारा नहीं समझ सकता और ये मुमकिन भी नहीं है. शायरों और कवियों ने तो इन बेजुबानों को अपनी आवाज दी है, लेकिन बॉलीवुड के गाने भी कहीं पीछे नहीं रहे. फूलों सा चेहरा तेरा गाना हो या फिर चांद सा रोशन चेहरा गाने की बात हो, फिल्मी गानों में मानवीकरण यानी पर्सनिफिकेशन की खूबसूरत मिसालें मिलती रही हैं. गजलों में भी लिखी जाती रही हैं. जुबान के एक दूसरे फलसफे की बात करें तो ये जो इशारा है वो उन निर्जीव चीजों की तख्लीक के साथ यानी उनकी पैदाइश के साथ ही उनकी पहचान से मालूम होता है. मसलन कि चांद को हम उसकी चांदी से पहचान जाते हैं, फूलों को उनकी खुशबू से पहचान जाते हैं. यानी कि चांद के लिए चांदनी और फूलों के लिए खुशबू ही उनका इशारा भी है और यही उनकी जुबान भी है. चांदनी और खुशबू हमसे हम कलाम होकर अपनी बात कहती हैं, लेकिन हुनर चाहिए उन बातों को समझने के लिए. शायद इसी बात को शिद्दत से महसूस करते हुए मशहूर शायर और फिल्मकार हमारे गुल्लू चाचा यानी गुलजार साहब के लिखते हैं, फूलों की तरह लब खोल कभी खुशबू की जबां में बोल कभी. फूलों की तरह लब खोल कभी खुशबू की जबां में बोल कभी. जाहिर है फूल अपनी खुशबू की जबां में ही बात कर सकता है. दोस्तों, दुनिया की हर वो चीज जिसे कुदरत ने जबान नहीं बख्शी है ना, वो अपने अंदाज में बातें करती हैं. और मुझे लगता है कि शायद वो हम इंसानों की एक्टिविटी को महसूस भी करते हैं. जैसे कि कहते हैं कि यूनिवर्स हमारी चीजों को सबसे हमसे ज्यादा बेहतर जानता है. हम जो यूनिवर्स को देते हैं वो हमें यूनिवर्स से मिलता है. तभी तो अगर कोई एक पेड़ कटता है तो उसके बगल वाले पेड़ की पत्तियां मुरझा सी जाती हैं, जैसे उनके साथी के कटने का उन्हें गहरा दुख हो, गम हो. एक दफा मैं ताजमहल देखने गया. एक वाकया सुनाता हूं आप सबको. तब मैं जवानी के दहलीज पर अभी पहला ही कदम रखा था और हर चीज को बड़े सलीके से देखने समझने की सलाहियत को अपने अंदर पनपते देख रहा था, या यूं कहें कि शिद्दत से महसूस कर रहा था कि मैं कुछ नया चीज नई चीजें महसूस कर रहा हूं. ताज के सामने खड़ा हुआ तो ऐसा लगा मानो ताज में लगे सारे संगमरमर मुझसे कह रहे हो कि अब तू भी किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा. इतनी खूबसूरत जगह है वो और इतना खूबसूरत लगा मुझे ताजमहल. ताज की दीवारों पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरते हुए ऐसा लगा जैसे कोई आहट सी जाग रही हो. न जाने क्या छुपा था उन पत्थरों के दिलों में जिसे मैं शिद्दत से महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या है, कुछ तो हो, कुछ तो है यहाँ पे, कोई आवाज, कोई आहट. कुछ देर बाद समझ में आया कि पत्थरों की भी अपनी एक जबां होती है जो किसी सांचे में ढलकर हमें अपनी खूबसूरती से अपनी ओर आने के लिए आवाज देती है. और शायद इसीलिए महसूसात की दुनिया के अजीम तरीन शायर जनाब बशीर बद्र कहते हैं, बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूं, कोई तो आए जरा देर को रुलाए मुझे. आह तो यही बेजुबानों से करने के लिए कितनी ही बातें हैं, मगर वक्त का तकाजा है कि मैं अपने दिल के वसवसे को यहीं रोक लूं और दीपिका जी की आवाज में विश्व दीपक जी की कहानी सुनूं जो इसी मौजू पर है, ताकि यह बात और पुख्ता हो जाए कि बेजुबा भी करते हैं बातें। जी दीपिका,
तो आज की कहानी जो है उसमें शायद सब इससे एग्री करेंगे कि दुनिया में एक चीज ऐसी है जो बोलने के लिए बहुत बदनाम है, और जबकि वो कोई सजीव चीज नहीं है। और विश्व दीपक जी ने उस पर ही एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी लिखी है और जिसका शीर्षक है पैसा बोलता है।
क्या बात,
तो आज सुनते हैं एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी विश्व दीपक जी की लिखी हुई। लोग कहते हैं ये पैसा बोलता है, लेकिन मैंने तो इसकी कोई आवाज तक नहीं सुनी। नहीं सुनी गुरु, कोशिश करो सुन लोगे। मैंने सुनी है, पैसा मुझसे अपनी शिकायत करता है। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती रही, इसकी शिकायतें बढ़ी और बदली भी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, शिकायतें बढ़ती जाती हैं। इसके किससे सुनाऊं? सुनोगे? क्यों नहीं, हो सकता है कि नया ही कुछ जान जाऊं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये सब एक विद्यार्थी के लक्षण हैं। जानते तो होगे ही, विद्यार्थी बनने के पहले ही पैसे के मामले में काक चेष्टा यानी कि कौए की तरह जानने की इच्छा और बको ध्यानम यानी कि बगुले की तरह ध्यान हर कोई पा चुका होता है। फिर मैं क्यों अछूता रहता? 5 पैसे लेकर बगल की गुमटी पर जाता और पाव भर दाल मोठ लेकर मजे से लौट आता। दुकानदार के गले में उतरता हुआ पैसा मुझे गुस्से से गले आता देखता कि अजब हो बाबूजी के कुर्ते में से मुझे चोरी छुपे क्यों निकाला। मैं भी अपने हम उम्र पैसों को मुंह चढ़ाकर भाग जाता था। फिर अगले दिन कोई और पैसा, कोई और शिकायत। स्कूल जाना शुरू हुआ तो जेब खर्च में 25 पैसे ने जगह ले ली। दिन भर वो 25 पैसा पॉकेट में झूलता रहता और मेरा मन ललचाता कि कब हाफ टाइम हो और इस पैसे की बलि चढ़ाई जाए। पढ़ना लिखना तो बस एक साइड शकल था। खैर, स्कूल के बाहर एक खोमचे वाला हर दिन मौजूद रहता था। हवा मिठाई और कॉफी, आह वाह, इन्हें देखकर जितना मैं खुश होता, पॉकेट में बैठा पैसा उतना ही लाल पीला हो आता। मुझे कहां बर्बाद कर रहे हो दोस्त, खर्चना है तो कॉपी किताब कलम दवात खरीदो, ना बन पड़ता है तो प्रेमचंद की ईदगाह की तरह घर से लिए घर के लिए चिमटा विमटा ही ले लो। यह कौन सी मिठाई हुई कि मुंह में गई और गायब, और यह दूसरी वाली कौन सी है, इसे उंगली में घुसेड़ कर क्या बचकानी हरकत कर रहे हो। अरे भाई, तुम बचपने में ही अधेड़ हो गए हो, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो 4 दिन के बचपन का लुत्फ उठाऊंगा ही ना, तुम कुड़ते हो तो कुड़ते रहो। मैं सीधा साधा उसे सुना देता था। फिर 2-4 महीनों में उसने टोकना ही छोड़ दिया, आराम से खर्च होने लगा। हाँ, लेकिन जब मैं उस 25 पैसे को किसी जरूरतमंद को देता, फिर उसे खर्च ना कर बागान से आम अमरूद तोड़ चुनकर खाता, तो वो मुझे उछल उछल कर शाबाशी भी दिया करता था। कहता कि आज तुमने मेरा महत्व समझ लिया है। अलग बात है कि ऐसे दिन विरले ही होते थे। आम के टिकोले के भरोसे मैं कॉफी को अलविदा कैसे कहता? इतनी समझदारी का भी अभी क्या करना था। इस तरह मेरी और पैसे की खींचातानी चलती रही। यही पैसा मुझसे एक दिन काफी नाराज हो गया। नाराज क्या, आग बबला ही समझिए। पता है, मेरे दादाजी मेरे पिताजी के बचपन में ही गुजर गए थे। रह गई थी बस दादी। सरकार के खजाने से इन्हें हर महीने 40 रुपए की पेंशन मिलती थी। 40 रुपए! इतने में आज तो बमुश्किल 2 या 3 सिगरेट आते हैं, लेकिन उस वक्त काम और नाम लायक कुछ ना कुछ तो आ ही जाता था। जरूरत हुई तो दादी उस पैसे से कुछ खरीदती, नहीं तो हम बच्चों में बांट देती। दादी की ममता भी खुश, हम भी खुश, और पैसा तो इस प्यार को देखकर अघाया ही होता। लेकिन हुआ ये कि उस बार ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं थे। दादी और माँ में ठन गई और पिताजी बने मूर्ख दर्शक। मैं और मेरे भाई बहन इधर इधर बिलखते फिरते। दादी हाथ जोड़े रोई जा रही थी कि ऐसा ना कहो, हमसे हमारे पोते पोतियों को अलग ना करो, हमारा है ही क्या, सब इन्हीं का तो है, हमको जैसे रखना है रखो, लेकिन हमारा यह हक तो ना छीनो। दादी के हाथ में 10-10 रुपए थे जो वे हमें देना चाह रही थी। माँ ने हमें खींचकर दादी से दूर कर दिया। दादी टूटती रही। मैं रोता हुआ दादी दादी चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ ना कर पाया। दादी के हाथ में आंसू और पसीने से गलता हुआ पैसा मुझे और मेरे माँ बाप को श्राप देता रहा। मैं उसकी आंखों में क्रोध की पराकाष्ठा महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी तरह मैं भी मजबूर था। आज का दिन होता तो मैं उस पैसे को जरूर समझाता, कोसता कि हर परिवार घर परिवार तुम्ही के कारण, ठनाठनी तुम्ही के कारण, हर समय तुम्ही कारण बनते हो इसके, और तुम्ही हो इसका कारण। जाने अनजाने हर घर तुम्हारे कारण टूट रहा है। एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि मेरा प्यारा साथी जादूगर के हाथों में मंच पर विद्यमान है। तब मालूम चला कि सिर्फ हंसता मुस्कुराता डांटता ही नहीं, घबराता भी है। जादूगर के हाथों में ये कागज की तरह बढ़ता जा रहा था और इसे जलाने की तैयारी थी। मैंने भी पहली बार जाना कि ये पैसा अपनी वैल्यू से इतर कागज या धातु भी है, मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो भगवान। उसी तर्ज पर इसका मोल शून्य भी किया जा सकता है। जादूगर ने जलाया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुल्लक के पैसे छटपटा रहे हैं। क्या सच में भी कभी ऐसा होगा कि पूरा देश, पूरी दुनिया के पैसे त्राही माम करें और जादूगर की तरह देश दुनिया का राजा इन पैसों का मूल्य छीन कर तालियां बजाए? कहीं ज्यादा दूर की तो नहीं सोच रहा? रहने दो, अभी तो मेरा साथी हंसते हुए मंच पर वापस आ गया है। जादूगर के साथ मैंने भी तालियां बजा दी। तो दोस्त, मैंने तो कई बार इस पैसे को बोलते सुना है। आज जब मैं नौकरी कर रहा हूं तो हर महीने इनकी ही खनखनाहट का इंतजार रहता है। किसी और के लिए काम करने पर यही होता है। कभी कभार तो महीना अंत होते होते ठन ठन गोपाल वाली हालत होती है, तब पैसे का चिढ़ाता मुंह याद हो आता है। लेकिन तुम्हारी बात तो अलग है, तुम्हारी तो ठेकेदारी मस्त चल रही है, पैसों का अंबार लगा होगा, हैं कि नहीं? कहां भाई, पिछला महीना अच्छा था, लेकिन इस बार बिल जमा किए कई दिन हुए। देखो कब तक हाथ कंगन नसीब होता है, बीवी बच्चों के शौक बढ़ गए, देर हुई तो हालत पतली हो जाएगी। अरे तुमने पिछली बार रजिस्ट्री के लिए कुछ पैसे मांगे थे, सॉरी यार दे नहीं पाया, पर जुगाड़ तो तुमने कहीं ना कहीं से कर ही लिया होगा। वही हर बार की तरह अंतिम अरण्य मेरे पिताजी। रोता गया तो उन्होंने दिए 5 लाख। ऐसे ही पूछ रहा हूं, बिल पास होने पर लौटा तो दिए होंगे? इधर एक तरफा रास्ता है दोस्त, वैसे भी माँ कहती है सब कुछ तो मेरा है। दोस्त ये गलत है, तुम भी पैसे को सुनना शुरू करो, इसका स्वभाव पलटा तो मुश्किल बढ़ जाएगी, संभल जाओ। अजब दकियानुसी पागल हो तुम, सुनते रहो तुम ही ऐसी ऐरी गहरी चीजों को, मैं तो चला। ये सब सुन जेब में रखा पैसा सोच रहा है कि मुझे देख नीयत तुम्हारी बदल जाती है, बुरा मैं कहलाता हूँ, रिश्ते तुम तोड़ते हो, कुटिल मैं कहलाता हूँ, चाले तुम चलो, बदनाम मैं हो जाता हूँ। और कहते हो कि पैसा जब बोलता है तो कोई और कुछ नहीं बोल पाता, उसके जेब से ताकते पैसे की कुटिल मुस्कान डरावनी हो चली थी। धन्यवाद। तो ये थी विश्व दीपक जी की बहुत ही खूबसूरत सी कहानी।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दीपिका जी, कहानी के जिस्म को अपनी आवाज की रूह देकर कहानी को जिंदा कर देती हैं आप। सचमुच लाजवाब अदायगी आज की। मुझे लगता है दीपिका जी कि पैसा सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि खेल, बड़े बड़े खेल भी रचता है कि नहीं
जी।
और विश्व दीपक जी ने इसमें जरा सी थोड़ी सी नब्ज पकड़ी है इस कहानी में। तो मुझे याद आ रहा है दीपिका जी कि जब बचपन में मैं गुल्लक में पैसे जमा करता था तो कुछ कुछ दिन पर गुल्लक से पूछता था कि कितने इकट्ठा हो गए, और फिर कान लगाकर सुनता भी था कि शायद वहां से कोई आवाज आए। बहरहाल बहुत अच्छी कहानी लिखी है विश्व दीपक जी ने और बहुत शुक्रिया उनका। तो दीपक, विश्व दीपक सर जी, आप बताएं इस कहानी के सीक्रेट।
सीक्रेट तो इस सबसे मुश्किल कहानी मेरे लिए रही है, क्योंकि ये बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट था कि सुनना है बेजुबा को। तो सही बताऊं तो दो तीन दिन तक मैं यही सोचता रहा कि अगर लिखना चाहता हूं तो किसको बुलवाऊं। क्या बोल सकता है। तो एक दो दिन तक तो मैं कलम पे सोच रहा था, कलम आज उनकी जय बोल, तो कलम बोल सकती है।
खैर वो भी टॉपिक अच्छा होता अगर लिखते तो वो भी बेहतरीन लिखते
जी, तो सोचा था, लेकिन मैं आधे तक पहुंच के फिर लगा कि ज्यादा बड़ी नहीं हो पा रही है, तो फिर वापस मैं पैसे पे आ गया। और पैसे में दूसरा मेरे ध्यान में था कि बचपन से लेकर बड़े होते तक सब कुछ इसमें समेटा जा सकता है, तो इसलिए मैंने बचपन के भी वो अनुभव डाल दिए, जहाँ पे आप जाते हैं वो खरीदते थे, दालमोट खरीद रहे हैं, या फिर बड़े होकर आप जो भी हवा मिठाई या फोफी खरीदते हैं जो उंगली में डाल के आप खाते हैं, फिर तो इसलिए मैंने कोशिश की कि पैसे के माध्यम से उन चीजों को बताया जाए जहां पे पैसा किस तरह से खर्च होते समय भी सोच रहा है कि मेरा सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो होती उसमें फिर एक दो तीन चीजें आ गई, जहां घर परिवार, पिछली कहानी में भी मैंने कोशिश की थी कि घर की बात अगर दादी नानी की बात है तो उसमें घर कैसे टूटता है वो बात लाई जाए। तो इसमें वो एक मौका मिल गया जहाँ दादी अपना अपने पेंशन के पैसे देना चाहती हैं, लेकिन वो घर घर के रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे भी बहस हो जाती है, तो वो मौका भी मिला। और आपने वसीम जी शायद वो बात पकड़ा हो या किसी ने पकड़ा हो, जहाँ जादूगर के माध्यम से मैंने कुछ थोड़ी सी नोटबंदी पे भी लिखने की कोशिश की कि देश दुनिया का राजा एक दिन बोल दे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे मौका मिला। अच्छा
कहावत भी है ना सर, वो कहावत भी है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, तो उस संदर्भ में ये कहानी बहुत खूबसूरत लिखी है आपने
जी। तो वसीम जी, विश्व दीपक जी की कहानी के बहाने मुझे भी जरा चार लाइनें लिखने का मौका मिल जाता है, जो कि हर बार
कुछ ना कुछ बता देती हूं। अंत की चार पंक्तियां जरूर दीपिका जी का मैं इंतजार करता हूँ, क्योंकि मैं आज भी इंतजार कर रहा था कि मेरी एक पंक्ति है वहाँ, अगर एक फिर लग गया कि अंत हो रहा है, दीपिका जी उसको कैसे समेटती है। उन्होंने अच्छा काफी अच्छा समेटा कि पैसे पे सारा आरोप लगाया जाता है लेकिन गलतियां किन्हीं और की होती हैं, तो काफी अच्छा समेटा वहां पे। और ये धन्यवाद आप लोगों का कि एक तो मैं लिखना शुरू कर पाया, दूसरा ऐसा है क्या कि इस एक टॉपिक पे मैं कई चीजें लिख पाया, तो धन्यवाद फिर से आप लोगों का।
आपका भी बहुत
आपका भी शुक्रिया सर कहानी भेजने के लिए,
अच्छी कहानी सच
जी, धन्यवाद।
और मनोज जी हमारे साथ हैं, मनोज जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज का इंतजार है।
अरे दीपिका जी, और हमेशा की तरह आपकी आवाज जो है हमेशा जो है अल्फाजों को कानों तक पहुंचाती है। मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूंगा कि अल्फाज जो है शायद आपके आवाज पाकर के ही मचल जाते होंगे।
अरे सर मुंतजर रहती हैं, सारे अल्फाज मुंतजर रहते हैं कि कब दीपिका जी हमें पढ़ें।
जी
जी जी बिल्कुल सही बात है।
अरे कहानियां मतलब इतनी खूबसूरत होती हैं, मैं क्या करूं।
लेकिन ये वाकई सच है दीपिका, दिस इज अ टैलेंट ऑफ योर्स कि जब वो जो कहानियां छपी हुई कागज पे होती हैं वो आपके एकदम से आपके आवाज पा करके एकदम से वो जीवित हो जाती हैं। ये मेरे ख्याल से ये कला है और ये मेरे ख्याल से गॉड गिफ्ट है जिसको आप इस तरीके से निखारती हैं और ऐसे सुनाती हैं, और ये तो वाकई बहुत बड़ी कला है।
बेशक।
और ऊपर से जो विश्व दीपक साहब की जो आज कहानी थी, इन्होंने जो मानवीय करण अलंकार का यूज किया है गद्य में, जहां पर आपने पैसे से बुलवा दी सारी चीजें, ये विश्व दीपक साहब मेरे ख्याल से ये आपके कई कलाओं में से एक कला है, आपको हमेशा पढ़ते आए हैं हम। और ये वाकई जो इस तरीके से आपने कहानी सोची और आपने पहले कही कलम से बात करनी है, उसके बाद आपने पैसे को लेकर क्या है, और जब आपने वो बचपन किससे स्टार्ट करवाई ये स्टोरी, तो मुझे भी याद आ गया कि जब स्कूल के बाहर एक रेडी खड़ी होती थी जिसके अंदर वो बंस जो मतलब बंस होते हैं उसके बीच में वो छोले डाल करके दिया करता था, 2 रुपए के आते थे, उसमें वो चटनी भी डालता था, प्याज भी डालता था। आज भी कई बार गाहे बगाहे वो ऐसा कुछ दिख जाता है लेकिन वो स्वाद नहीं आता। तो मेरा पैसा ये बोलता है कि आज तू 50 रुपए दे रहा है इसी बन के जो 2 रुपए में लुत्फ आया करता था। तो मेरा पैसा भी कहता है, गाली देता है कि अरे क्यों खराब कर रहा है। तो क्योंकि जो बोले बाकी जो आपने आवाज दी है पैसे को ना, वो बहुत खूबसूरत बिंब बन पड़ा, बहुत खूबसूरत वीडियो भाई, बहुत
जी कोशिश वही थी। अंत करते हुए भी मैंने वही सोचा कि घर का वो एक बात बता दिया जाए कि जहाँ पिता को लोग मान लेते हैं फॉर ग्रांटेड कि आपके पास पैसा जब नहीं होता तो पिता के पास जाते हैं, पैसे मांग के काम कर लेते हैं, वापस नहीं देते क्योंकि आपको लगता है सब तो आपका ही है।
जी तभी मैंने विश्व दीपक जी उसमें ये डाला कि नीयत आपकी खराब होती है और दोष आप हमें देते हो, मतलब पैसा इस तरह से सोचता होगा। तो बस थैंक यू सो मच मनोज जी, आपका भी, विश्व जी आपका भी, और वसीम जी अगला टॉपिक
थोड़ा सा
जी बता ही देती हूँ, जिसके लिए मैं 2 लाइनों से शुरू करूंगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि टॉपिक क्या है। कुछ सपने, कुछ ख्वाब, कुछ तमन्नाएं उदास टंगी रह जाती हैं उन दीवारों पर जब छोड़ती हूं मैं किराए का घर।
किराए का घर
जी अगला टॉपिक हमारा, किराए का मकान या किराए का घर, कुछ भी आप ले सकते।
बहुत खूबसूरत टॉपिक है और मैं कुछ साल पहले मैंने जब एक किराए के घर में रहता था और बदलना पड़ा और उस दौरान बड़ी मुसीबतें आई, तो मैंने लिखा कि परदेश में रहने का ये हुआ है खसारा, परदेश में रहने का ये हुआ है खसारा, सांसें बेच कर मकान का देता हूं किराया। तो ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है और मुझे लगता है कि लोग इस पर बहुत अच्छी कहानियां लिखेंगे और भेजेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मंडे तक कहानियां आ जाएं। 500 से 700 शब्दों में हमें कहानियां लिख भेजिए हमारी मेल आईडी पर kahanibuno@gmail.com kahanibuno@gmail.com। दीपिका जी, हम एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं आज, आप इजाजत दें तो करें। मैं ये चाहता हूं कि अगला एपिसोड हमारा 15वां एपिसोड है और हमने 3 महीने पूरे कर लिए हैं, तो क्यों ना 3 महीने के बीच जो जितनी कहानियां आई उनमें से बेस्ट कहानीकार को अवार्ड दिया जाए, कैसा रहेगा?
अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया।
मनोज सर बताएं।
तो हम ये अगली बार अनाउंस करेंगे वसीम जी।
जी जी, नाम अगली बार अगले एपिसोड में अनाउंस करेंगे
जी।
और वो बढ़िया ख्याल है और इसे तो इसको बढ़ाई आगे। हाँ बिल्कुल,
हाँ हाँ हाँ, पिछले 3 महीनों में जो पढ़ी गई कहानियां हैं उनके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि किसे ये अवार्ड जाता है।
जी बिल्कुल, और हमें इंतजार रहेगा हमारे विनर का कहानी बुनो के अगले एपिसोड में।
अब तक के जितने भी कहानीकारों ने कहानियां भेजी हैं उन सबको अभी से हम शुभकामनाएं कहते हैं कि देखिए किस्मत का पिटारा किसकी तरफ खुलता है। और उस अवार्ड में
14 कहानियां वसीम जी, जी 14 कहानियां हम पढ़ चुके हैं आज तक,
और उस अवार्ड में मतलब
जी
जी उस अवार्ड में क्या दिया जाएगा कहानीकार को, ये घोषणा करेंगे हमारे सजीव सर, हमारे मेंटर
जी,
उनके
जी।
उनकी आवाज और उनके उससे मतलब स्पीच से शुरू की जाएगी कि वही अनाउंसमेंट करें, है ना?
सजीव जी आज शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं
लेकिन जुड़ेंगे अगले सप्ताह।
मुझे आप 10 जून के बारे में जरूर बता दें।
जी जी बिल्कुल,
वो रिलीज हो रही है तो आप दीपिका जी अगर आप बता पाए तो बहुत।
दीपिका जी
बताइए, आप बताइए।
हाँ,
10 जून के
जी
वो फिल्म आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना?
जी
जी, 10 जून को एक फिल्म आ रही है अन्य, जिसमें जिसके संगीत में हमारे आरपीआई का बहुत बड़ा योगदान है जी, और जिसके लिरिक्स लिखे हैं हमारे सजीव जी ने, जो आप जी, सब जानते जी, हैं सजीव जी लिरिक्स लिखते हैं, तो उनके बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और 10 जून को ये रिलीज हो रही है सिनेमा घरों में, तो आप सब जरूर देखने जाइएगा। अन्य
देखें भी और सोशल मीडिया पर अपने रिव्यूज भी शेयर करें और लोगों को बताएं भी और अपने दोस्तों को कहें भी कि ये उसके बारे में बताएं भी कि ये फिल्म कैसी है, अच्छी है, जाएं देखें, वो भी सराहें। और सजीव सर के गाने खासतौर से सुने जो उन्होंने लिखा है, ये ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा इस बात के लिए। और सबका शुक्रिया, तमाम सुनने वालों का, मनोज सर का शुक्रिया, विश्व दीपक जी का शुक्रिया, आप आज के एपिसोड के लिए।
अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। मनोज जी थैंक यू, सब लिसनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्व दीपक जी आपका।
इफ यू एंजॉयड दिस, डाउनलोड द मेंसा ऐप एंड स्टार्ट योर ओन लाइव ऑडियो कन्वर्सेशन।